अरमान आस्था को रोते हुए देखने लगा। उसे दर्द में देखकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं, क्योंकि आस्था को रोते हुए वो किसी भी कीमत पर नहीं देख सकता था। अब आस्था को इस तरह रोते हुए देखकर नानी माँ उसे तुरंत शांत करते हुए बोली, गोरी बिटिया, इतना रोएगी तो भाई यहाँ बाढ़ आ जाएगी। तुझे इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तेरी नानी इतनी जल्दी तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तेरी नानी माँ को अभी पूरी सेंचुरी भी पार करनी है। तू देखना, मैं तो डबल सेंचुरी लगाऊंगी, डबल सेंचुरी। और अभी तो मुझे तुम्हारे दामाद जी के और तुम्हारे कम से कम छोटे छोटे पूरे 6 बच्चे देखने हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था और ज्यादा रोने लगी। एक तो मोहब्बत से दूर जाने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिलहाल आस्था ने जल्दी से नानी माँ का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू लिए रोते हुए बोली, अब जानती है नानी माँ क्या हुआ है। आस्था को नानी माँ से सारी बातें बताने की आदत थी। वो नानी माँ को बिना कुछ भी बताए नहीं रह सकती थी। लेकिन इससे पहले कि आस्था अपनी कोई बात पूरी करती, नानी माँ ने अपना सिर पकड़ लिया था और थोड़ा सा आंख बंद करते हुए कराहते हुए बोली, पता नहीं बेटा, अचानक क्या हो गया है मेरे सर में। अब तुझे रोता हुआ देखा तो अजीब सी घबराहट दिल में हो रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरे बच्चे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं जानती हूं कि तू मेरे लिए रो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रेस वाली बात है। लगता है कहीं मैं फिर से कोई स्ट्रेस वाली बात सुनकर कोमा में ना चली जाऊं। देख, तुझे रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है गोरी बेटा। अगर मैं इस बार कोमा में चली गई तो शायद मैं इस बार वापस नहीं आ पाऊंगी, तो प्लीज़ अब रोना बंद कर। नानी माँ की बात सुनकर आस्था ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। जिस बात के बारे में वो नानी माँ को बताना चाहती थी, वो तुरंत बात बदल लेती है। ठीक उसी वक्त अरमान वहाँ आया। अरमान को वहाँ देखकर आस्था तुरंत खड़ी हुई और कमरे में जाने लगी, लेकिन नानी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अनजान बनते हुए बोली, मुझे दामाद जी से मिलने दे गोरी बेटा, दामाद जी को मेरे पास तो लेकर आओ। उनका हाथ पकड़कर मेरे पास ले आ। मैंने सुना दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है। जा बेटा, जल्दी जा, सहारा दे अपने पति को। शाबाश बेटा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये बोला, आस्था अपनी आंखें सिकोड़कर अरमान की ओर देखने लगी थी। लेकिन अरमान के चेहरे पर एक छोटी सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी और वो बड़े ही प्यार से नानी माँ को देखने लगा। अब आस्था नानी माँ को मना करना चाहती थी कि वो अरमान के पास नहीं जाएगी, लेकिन तभी नानी माँ ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा इतना टाइम क्यों लगा रही है, क्या सोच रही है, जाना बेटा, मेरा सर दुख रहा है। अब जैसे ही नानी ने ये बोला, आस्था तुरंत खड़ी हुई और ना चाहते हुए भी अरमान का हाथ उसने पकड़ लिया था। अब तो अरमान का दिल थोड़ा सा सुकून से भर गया, क्योंकि अब उसकी आस्था उसके करीब है। और जल्दी ही आस्था ने अरमान का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे नानी माँ के पास लेकर आने लगी। तब अरमान ने भी जानबूझकर आस्था के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था और अपना पूरा भार उसके शरीर पर डालने की कोशिश करने लगा। अब तो आस्था खून भरी नज़रों से उसको देखने लगी और बनावटी मुस्कान लाते हुए मन में सोच रही थी, हाँ, सारा का सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया, जैसे कि मैं संभाल लूँगी। हालांकि अरमान जानता था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने इस बात का भी ख्याल रखा था। लेकिन फिर भी आस्था को तंग करने के इरादे से वो थोड़ा सा उस पर हावी हो रहा था। फिलहाल आस्था हाँफते हुए लगी और 2-4 कदम की दूरी में थक गई थी और जैसे तैसे नानी माँ के पास अरमान को लेकर आ गई थी। तब नानी माँ ने उठकर अरमान के सर पर हाथ फेरा और ममता भरी आवाज में बोली, बेटा तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारे लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई बेटा। ये बोलकर नानी माँ अरमान को आशीर्वाद देते हुए प्यार करने लगी और दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथों में देकर बोली, आस्था की भी हालत ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक खड़ी हो सके, और तुम भी बीमार हो तो बेटा तुम भी जाओ, जाकर आराम करो, जाओ दोनों अपने कमरे में, शाबाश बेटा। अब आस्था बोली, नानी मैं पहले आपको आपके कमरे में छोड़कर आती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। नानी माँ तुरंत बोली, मेरे बच्चे तुम देखो दामाद जी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है और वो कितने ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तुम जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ जब तक दामाद जी ठीक नहीं हो जाते तुम लोग नीचे ही किसी कमरे में शिफ्ट हो जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ मेरे वाला ही कमरा ले लो, ठीक है, चलो चलो शाबाश, इस कमरे में चले जाओ। अरमान धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं नानी माँ, हम अपने कमरे में ही चले जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, मैं चल सकता हूँ, और अगर मेरी बीवी मुझे सहारा देगी तो मैं कयामत तक चल सकता हूँ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, नानी माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तभी आस्था अपनी आग उगलती हुई आंखों से अरमान की ओर घूर रही थी कि वो नानी माँ की बीमारी का किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है और उसे अपने करीब कर रहा है। ठीक उसी वक्त वो मजबूर हो गई थी और अरमान को सहारा देकर वो उसके कमरे में लेकर जाने लगी थी। वहीं उन दोनों को जाते हुए देखकर नानी माँ ने राहत की सांस ली थी। दादाजी, जो कि छुपकर ये सब नौटंकी देख रहे थे, वो तुरंत वहां आए और खुश होकर बोले, अरे वाह बहन जी, आपने तो सिचुएशन आसानी से संभाल ली। अब तो मुझे भी उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है। तब नानी माँ बेफिक्री से बोली, आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं सब संभाल लूंगी। वेल, अब जल्दी ही आस्था अरमान को कमरे में ले आई और कमरे में छोड़ने के बाद वो फटाफट वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन तुरंत अरमान ने रिमोट कंट्रोल का उपयोग करते हुए पूरी तरह से कमरे को बंद कर दिया था और आस्था को गोद में उठाकर तुरंत उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बराबर में लेट गया। अब तो आस्था का दिल थक थक होने लगा कि आखिर अरमान उसके साथ करना क्या चाहता था। वो अरमान को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी और उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखी हुई थी। लेकिन अरमान अब आस्था से दूरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वहीं आस्था भी अरमान को खरी खोटी सुनाना चाहती थी। लेकिन अचानक अरमान ने अपने सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर को आस्था के होठों पर रख दिया था और आस्था को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद करके लेट गया था। ऐसा लग रहा था मानो अरमान अपने सुकून को हासिल कर रहा हो। आस्था, जो कि सब भागदौड़ से काफी ज्यादा थकी हुई थी, वो अरमान की बाहों से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन अरमान ने उसे एक इंच तक नहीं हिलने दिया था। अब तो आस्था ने भी रेसिस्ट करना छोड़ दिया और कब उसकी आंख लग गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर आहान अब अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी इस बात के बारे में किसे बताएं और कैसे बताएं कि रौनक माँ बनने वाली है, और वो रौनक को भी सारा सच बता देना चाहता था और उससे सीधे सीधे प्रपोज करके उसे अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि वो कहाँ से शुरुआत करे, क्या करे, किससे बात करे। तभी उसके पास आकाश का कॉल आता है। आकाश का कॉल देखकर वो चौंक गया और फटाफट से आकाश के पास दौड़कर आ गया था। और जैसे वो वहां आया तो उसने देखा कि दादाजी, नानी माँ, साथ ही साथ रौनक और रश्मि उस कमरे में मौजूद थे। अब उन लोगों को वहां देखकर आहान का दिल घबराहट से थक थक करने लगा था कि शायद रौनक की प्रेगनेंसी वाली बात सबको पता चल चुकी है, इसीलिए आकाश ने फोन करके उसे वहां बुलाया हो।
अब वहां जाकर आहान पूरी तरह से घबरा गया और फटाफट से दादाजी के कदमों पर झुकते हुए बोला, दादाजी दादाजी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर देना। मैं तो इस बंदरिया को बताना चाहता था, लेकिन ये मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब आहान के इस तरह की उठपटांग बातें करते हुए देखकर सब लोग कन्फ्यूज्ड हो गए। वहीं रौनक को तो अचानक खांसी आने लगी और उसने नाराज होकर मन में सोचा कि ये बेवकूफ किस तरह की बातें कर रहा है, और साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि वो सबके सामने उसे बंदरिया कह रहा था। तब रश्मि आहान के पास आई और बोली, आहान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और रश्मि की आवाज़ सुनकर आहान चौंक गया। उसे तो लगा था कि दादाजी अभी उसे मारने वाले थे, तो इसीलिए हड़बड़ाहट में उसने दादाजी से माफ़ी मांगी थी। लेकिन अब रश्मि की ये बात सुनकर वो बौखलाते हुए बोला कि आपको कुछ पता नहीं चला? तब रश्मि हैरानी से बोली, क्या पता नहीं चला? तभी दादाजी ने तुरंत आहान का कान पकड़ा और उसे फटकारते हुए बोले, नालायक, अपनी बदमाशिया का बंद करेगा, हाँ, बड़ा हो रहा है, सुधर जा। क्या नया नाटक तूने लगा दिया? हम यहाँ ज़रूरी बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और तुझे हमने यहाँ कुछ ज़रूरी काम से बुलाया है। अब जैसे ही दादाजी ने ये बोला, आहान चौंक गया था। और तभी रश्मि बोली, अरे हाँ, अब तुम अपने बेकार के नाटक बंद करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। हमने अरमान और आस्था को एक साथ लाने के लिए एक प्लान बनाया है। देखो, आस्था को ये पता चल चुका है कि अरमान डेविल किंग था, लेकिन वो डेविल किंग क्यों बना था और उसने किन किन लोगों को सजा दी, ये बात आस्था नहीं जानती है। और हमें पूरी उम्मीद है जिस दिन उसे सच पता चलेगा, वो अरमान से अपनी नाराज़गी खत्म कर लेगी। नानी माँ को दादाजी ने यही बात बताई थी कि आस्था इस वजह से अरमान से नाराज़ है। और किन हालातों में अरमान एक मासूम से बच्चे से डेविल किंग बना, क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें उन्होंने नानी माँ को बता दी थी। इसलिए अब नानी माँ ने काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद अरमान को माफ़ कर दिया था। और नानी माँ ने सोच लिया था कि वो आस्था को भी समझाएगी कि वो अब अपनी घर गृहस्थी में आगे बढ़े, किसी भी पिछली बात को लेकर ना बैठे। फिलहाल नानी माँ को इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि अरमान का कनेक्शन राजवीर जिंदल से था। वेल, आकाश और रश्मि ने प्लान बनाया कि आस्था और अरमान को एक करने के लिए उन्हें घर में कोई ना कोई शादी का फंक्शन रखना होगा या कोई ना कोई पार्टी करनी होगी। और क्योंकि राधिका और सुमित की शादी उस वक्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब दोनों में प्यार हो चुका था, ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों की शादी करने का फैसला किया था। और अविनाश और एंजल की शादी का प्रस्ताव नानी माँ ने रख दिया था, तो घर में दो दो शादियाँ होने वाली थी और उसमें रौनक और आहान दोनों ही ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से मौज मस्ती करने वाले थे, क्योंकि और उन दोनों की मौज मस्ती से ही घर में शादी का माहौल बहुत बढ़िया और खुशनुमा होने वाला था। अब आहान ये सुनकर चौंक गया था और खुश होकर मन में बोला, काश अगर मैं इन लोगों को सच बता पाऊं तो सुमित भैया और राधिका दीवी की तरह मेरी और रौनक की भी शादी हो जाएगी। ये सोचते हुए आहान बेचारा सा मुंह बनाने लगा। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट्स जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टीसी।